যে আনিল প্রেমাধনা করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেমাধনা করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাথা, কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাথা, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরা, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরা, কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরা, একা কালে কোথা গেলা গৌরা নটরা, একা কালে কোথা গেলা গৌরা নটরা, পাষাণে কুটিব মাথা আনালে পাশিব, পাষাণে কুটিব মাথা আনালে পাশিব, গৌরাঙ্গা গুণে রানিধি কোথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গুণে রানিধি কোথা গেলে পাবো, সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলা, সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলা, সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলা, সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, রাধা রামন রাধা রামন রাধে, জয় রাধিকা রমণ রাধিকা রমণ রাধিকা রমণ, জয় রাধিকা রমণ, কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম, জয় কৃষ্ণ বলরাম, গৌরানিতাই গৌরানিতাই গৌরানিতাই, জয় গৌরানিতাই, প্রভুপাদ প্রভুপাদ প্রভুপাদ, জয় প্রভুপাদ, নিত গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল, জয় সুভাষ পরমহংস পরিব্রজ আচার্য স্তোত্র শর্ষি শ্রীমদ ভাঙ্গেস অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ কী জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়, শিল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তিরুভাবতী মহামহোৎসব কী জয়, নিতায় গৌর প্রেমানন্দে অল ঘোরিষ্ঠ দর্শন বল্লভটি হরে কৃষ্ণ, অল ঘোরিষ্ঠ দর্শন বল্লভটি হরে কৃষ্ণ, অল ঘোরিষ্ঠ শ্রী গুরু গৌরাঙ্গা, ওম অজ্ঞানতিম্রন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ, শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টম স্থাপিতাম যেন ভূতলে, স্বয়ং রূপ কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান্তিকম, বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ, পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, তো আজ বহুত পবিত্র দিন হ্যাঁ, শিল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কাজ তির্ভাব দিবস হ্যাঁ, আজ শিল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তির্ভাবতি মহামহোৎসব কি যায়, শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छई गोसाई कोरी चरण वंदन जा होते विनाश अभिष्ट पुरन। तो छह गोस्वामियों की शरण लेने से क्या होता है, समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं और समस्त प्रकार की इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। तो ये जो छह गोस्वामी हैं वृंदावन के, श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी परिकर हैं, नित्य परिकर हैं, और श्रील प्रभुपाद ने भी कई जगह पे बताया है कि हमें तो इन छह गोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलना है। वी हैव टू फॉलो दी फूट स्टेप्स ऑफ सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। छह गोस्वामियों से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में श्रील लोकनाथ गोस्वामी और श्रील भूगर्भ गोस्वामी को भेजा था, और श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने स्वयं भूगर्भ गोस्वामी के साथ लगभग 300 से ज्यादा लीला स्थलियों का पता लगाया लोकनाथ गोस्वामी। तदुपरांत अन्य गोस्वामी भी वहां पहुंचे, शिलरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य जितने भी गोस्वामीगण हैं वो भी वहां पे पहुंचे। तो आज शिल गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। श्री गौर गणदेश दीपिका में ये वर्णन आता है, अनंग मंजरी भाषित सात गोपाल भट्ट का भट्ट गोस्वामी केची दाहु श्री गुण मंजरी। श्री गौर गणदेश दीपिका में लिखा है ये श्लोक संख्या 184, उनको अनंग मंजरी का अवतार बताया गया। अनंग मंजरी ब्रज लीला में श्रीमती राधारानी की छोटी बहन, यंगर सिस्टर के रूप में आती हैं। अनंग मंजरी जो कि गौर लीला में जानवा माता के रूप में भी प्रकट होती हैं, और साथ में कुछ लोगों का कहना है कि वो गुण मंजरी के भी अवतार हैं। खैर जो भी हैं, छह गोस्वामी प्रमुख हैं, महाप्रभु के निजी पार्षद हैं, निजी परिकर हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूरा किया। ब्रज की लीला स्थलियां जितनी भी थी वो लुप्त हो चुकी थी, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब गोस्वामियों को भेजा था ब्रजमंडल में कि लीला स्थलियों का पता लगाएं, हर्ष्य विग्रह की स्थापना करें, ग्रंथों की रचना करें। तो हालांकि ये ब्रज में रह रहे थे, लेकिन फिर भी भजनानंदी होने के बावजूद भी साथ में गोष्ठियानंदी भी थे। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, गोष्ठानंदी इज भजनानंदी हु इज प्रीचिंग। गोष्ठियानंदी भजनानंदी होते हैं जो प्रचार करते हैं। गोष्ठी आनंदी का मतलब है, श्रील जी गोस्वामी ने इसके दो अर्थ बताए हैं। एक अर्थ बताया गोष्ठानंदी का जो भक्तों के मध्य में बीच के भक्तों के मध्य में बैठकर भक्तों के साथ कृष्ण कथा करते हैं, मच्छिद मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्त शमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे को बोध कराते हैं, एक दूसरे को कृष्ण कथा सुनाते हैं, तो ऐसे भक्तों को गोष्ठानंदी बोला है श्रील जी गोस्वामी। और दूसरे गोष्ठानंदी कौन है, जो अन्य जीवात्मा को, जो बद्ध जीवात्मा है बाहर जो अभी तक भक्त नहीं बने हैं, उनको कृष्ण भावना भावित बना दे तो वो उसमें आनंद आता है, उनको भी उसमें भी आनंद आता है, तो वो भी गोष्ठानंदी। भजनानंदी अपने आप में कौन है, भजनानंदी वो होते हैं जो बिल्कुल निर्जन भजन करते हैं, भगवान की नित्य लीलाओं का स्मरण करते हैं हरि नाम लेते हुए, कृष्ण कथा नहीं करते यानी कि प्रवचन इत्यादि नहीं देते, ग्रंथ नहीं लिखते और साथ में शिष्य नहीं बनाते। ये होते हैं पूर्ण रूपेण जो भजनानंदी है। लेकिन भक्तों के साथ जब चर्चा होती है, जैसे छह गोस्वामी मिल बैठकर आपस में एक दूसरे से चर्चा करते थे और उन्होंने ग्रंथों की रचना की, अर्चे वगैरह की स्थापना भी की उन्होंने, और श्रील सनातन गोस्वामी तो घर घर जाके ब्रजवासियों की समस्याओं को भी सुलझाते थे, तो एक रूप से देखा जाए तो ये गोष्ठानंदी भी थे। लेकिन ब्रज में रह के ही उन्होंने क्या किया, पूरे पृथ्वी में प्रचार कर श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि ब्रज में जिस उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था ब्रज में 6 गोस्वामियों को कि ब्रज को पुनः प्रकट किया जाए, उसका पुनरुत्थान हो, उसी ब्रज का दर्शन श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में सभी जगह कर दिया। तो प्रभुपाद ने 6 गोस्वामियों का ही कार्य किया है और पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि जब वो 10 या 12 साल की उम्र के थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे आकर रुके थे 4 महीने के लिए, चातुर्मास के समय। अभी इसी समय चतुर्मास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त हुआ था गोपाल भट्ट गोस्वामी को। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत का पान किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और साथ में बाद में जब वो वृंदावन गए थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए जगन्नाथपुरी से डोर कोपिन भैरवास और अपना आसन भी भेजा था गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी है जिनको सबसे अधिक श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके घर पे रुके श्री चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में 4 महीने लगातार गोपाल भट्ट गोस्वामी को व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे अधिक समय बिताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना शिक्षा गुरु बताया है। उन्होंने लिखा है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछई गुरु सिक्खा गुरु जे अमार तसवार पाद पद में खोरी नमस्कार। तो इस प्रकार उन्होंने उल्लेख किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और साथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी बताया है, उन्होंने बताया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन्होंने मना किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि उनके बारे में कुछ लिखे नहीं नम्रता के कारण। ऐसे कई हमारे आचार्य हुए हैं जो नम्रता पूर्वक नम्रता के कारण नम्रता के भाव में वो मना करते हैं कि मेरे बारे में आप कुछ ना लिखें, लेकिन अन्य वैश्यों के बारे में जो लिखा होता है या अन्य वैश्यों अनुमति देते हैं लिखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें नम्रता नहीं है। वो इसलिए लिखवाते हैं ताकि साधारण जनमानस को लाभ पहुंचे। तो दोनों ही सही है ना। हम ये ना सोचे जिनके बारे में लिखा है उनमें नम्रता नहीं है, उनमें भी नम्रता है, उतनी नम्रता है, लेकिन हम सबके शिक्षा हेतु और हम सबके कल्याण हेतु अन्य वैष्णव जो है अपने जीवन चरित्र के बारे में बताते हैं। जैसे श्रील भक्तिनो ठाकुर ने स्वयं ही लिखा, स्वलिखित जीवनी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में, या कई जो चरित्र लिखे गए हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लिखा गया। तो आचार्य ने अनुमति भी दी है अपने बारे में लिखने के लिए, वो भी सही है। लेकिन जो अन्य लेखक हैं जैसे वृंदावन दास ठाकुर हैं, लोचन दास ठाकुर हैं और कवि करणापुर हैं और जयानंद ठाकुर हैं, इन सब ने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं खास। केवल मुरारी गुप्त के कड़चे में ये जानकारी प्राप्त होती है, और साथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में मनोहर दास यदुनंदन आचार्य और साथ में नरोत्तम दास ठाकुर ने भी उनके बारे में लिखा है। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में मनोहर दास ने अनुराग वली नामक ग्रंथ में उनके बारे में लिखा है, और यदुनंदन दास ने करुणानंद और नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम विलास में उनके बारे में लिखा हुआ है गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म हुआ 1500 ईस्वी में बेलगुड़ी नाम गांव में जो कि कावेरी नदी के तट पे है श्रीरंगम में, द्रविड़ ब्राह्मण परिवार में जो कि रामोजी संप्रदाय के थे उनके पिता का नाम था वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट उनके बड़े भाई थे प्रबोध भट्ट और उनके छोटे भाई थे त्रिमूल भट्ट। तो ये तीनों एक साथ ही रहते थे उस समय, सब एक साथ ही रहते थे, जॉइंट फैमिली होता था उससे। आज के जैसे नहीं, सब अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी भी अलग रहते हैं, बच्चे भी अलग रहते हैं, सब अलग रहते हैं। उस समय सब एक साथ रहते थे। तो ये तीनों भाई एक साथ रहते थे। गोपाल भट्ट जो है वो वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे, वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि हाँ, त्रिमल भट्ट जो है सबसे बड़े थे, और उनके बाद थे प्रबोध भट्ट, और उसके बाद थे वेंकट भट्ट। और गोपाल भट्ट जो है वो वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। और जैसे जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े हुए, उनकी बुद्धि जो है और कुशाग्र हुए, बहुत बुद्धिमान थे वो। और वेंकट भट्ट ने अपने भाई प्रबोध भट्ट को सौंपा था कि उनको शिक्षा दें। यहाँ तक भी बताया जाता है कि प्रबोध भट्ट ने उनको दीक्षा भी दी थी। और यही प्रबोध भट्ट बाद में जाकर वृंदावन में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। शिल भक्ति भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार चैतन्य चरितामृत में जो उन्होंने अपना भाष्य दिया है, गौड़िया भाष्य, उस भाष्य में ये बता रहे हैं कि प्रबोध भट्ट ही बाद में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बने। तो इनके सानिध्य में रहकर उन्होंने न्याय शास्त्र, व्याकरण इत्यादि सीखा। गोपाल भट्ट बचपन से ही भक्त थे। 9 साल की उम्र में उनके पिता वेंकट भट्ट उनको जगन्नाथपुरी ले गए, और जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो भावावेश हो गए, भावावेश में आ गए और भाव विभोर हो गए। तो गोपाल भट्ट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था 1510 में और माघ के महीने में, और जगन्नाथपुरी गए थे वैशाख के महीने में। और उसके बाद उसी साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा भी प्रारंभ की थी। दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की थी और आषाढ़ के महीने में पहुंचे थे, यानी कि 1511 में श्रीरंगम पहुंचे। और स्नान करने के उपरांत, कावेरी नदी में स्नान करने के उपरांत, वो श्रीरंगनाथ यानी कि रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। और रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने बहुत ही भव्य नृत्य किया, भव्य नृत्य कीर्तन किया। हरि वो, आषाढ़ का महीना है, बारिश हो रही है, छतरी से साथ सजाया गया है, कहीं भीग ना जाए। राधिका रमन जी, जय हो श्री राधिका रमन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो भावमय कीर्तन चल रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ जी के सामने, और हजारों की तादाद में भक्त वहां पर एकत्रित हुए महाप्रभु का ये नृत्य संकीर्तन देखने के लिए। वेंकट भट्ट भी देख रहे थे और उनके सौंदर्य को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर वेंकट भट्ट जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए, वो भी आनंदित हो गए। और जब संकीर्तन पूरा किया, नृत्य जब उन्होंने रोका, तो वेंकट भट्ट ने उनको निमंत्रण दिया। ये चीफ प्रीस्ट थे रंगनाथ मंदिर के, उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर आए हैं 4 महीने के लिए, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे घर पर रुकें चतुर्मास के इस अवसर पे। तो उन दिनों दक्षिण भारत में, या उन दिनों सामान्यतया सन्यासी जो है वो चतुर्मास के समय भ्रमण नहीं करते थे, बारिश के मौसम के कारण, बरसात के कारण सड़कें खराब हो जाती थी। तो यात्रा करना जो है वो ठीक नहीं माना जाता था। इस कारण से सुरक्षा की दृष्टि से, और 4 महीने चतुर्मास का भी समय क्योंकि होता था, तो एक ही स्थान में रहकर वो हरि कथा करते थे, भजन इत्यादि करते थे। तो वेंकट भट्ट के जब घर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले कावेरी नदी के जल से वेंकट भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण धोए, और जैसे हमने पहले बताया कि चरणामृत का पान किया, घर के सभी सदस्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत का पान किया डायरेक्ट, और गोपाल भट्ट ने भी चरणामृत का पान किया। और उसका क्या परिणाम हुआ? अश्रु कंपन, अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव गोपाल भट्ट के शरीर में दिखाई पड़े। अश्रु कंपा पुलक सात्विक भाव उनके शरीर में दिखाई पड़े। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ले लेते तो वेंकट भट्ट ने उनसे कहा कि अब चतुर्मास से क्योंकि आ गया है, मेरी आपसे एक नम्र प्रार्थना है कि आप यहीं पे रहें और आपके मुखारविंद से हम सभी लोगों को कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रत्येक दिन कावेरी नदी में जाते, स्नान करते और हजारों की तादाद में लोग आते उनका दर्शन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, विशेष रूप से जब रंगनाथ जी के सामने वो कीर्तन करते। आज भी जब गौड़िया वैष्णव या इस्कॉन के भक्त श्रीरंगम जाते हैं रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ के जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं बहुत ही आदरपूर्वक गौड़िया वैष्णव या गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय के भक्त हैं या इस्कॉन के भक्तों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। तो इस तरह से गोपाल भट्ट को अवसर मिला कि चार महीने वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहे और यह भी बताया गया कि गोपाल भट्ट ने कृष्णदास से सुना था जो उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा में निकले थे, जो उनके सेवक थे, महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से जो उनकी नादिया की लीला है, बाल लीला के बारे में गोपाल भट्ट ने कृष्णदास से सुना। और जब वो सुनते थे, श्रवण करते थे गौर लीला के बारे में या गौर लीला यानी कि निमाई के बारे में, नवदीप लीला के बारे में, तो गोपाल भट्ट जो है वो दोष देने लगे, विधाता को दोष देने लगे, ब्रह्मा जी को दोष देने लगे कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों जन्म दिया दक्षिण भारत में, क्योंकि गौड़िया वैष्णव के लिए दक्षिण भारत में जन्म लेना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के माध्यम से वेंकट भट्ट को भी गौड़िया वैष्णव बनाना चाहते थे और साथ में प्रबोध भट्ट को भी, तो दक्षिण भारत में प्रचार करने हेतु के उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को वहां रखा। तो गोपाल भट्ट सोचने लगे कि मेरा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है, मेरा जन्म नवदीप में क्यों नहीं हुआ, है ना। तो विधाता को यानी कि ब्रह्मा जी को वो कोस रहे थे कि मुझे तो ये अवसर ही नहीं मिला कि मैं गौर लीला का यानी कि निमाय का दर्शन कर सकूं, उन निमाय का दर्शन कर सकूं जिनके केश, सुंदर केश हमेशा सुसज्जित रहते थे फूल से, जिनके माथे पर तिलक रहती थी, उस सुंदर मुस्कान को मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो सन्यास वेश देख रहा हूं, मुंडिल यानी कि मुंडित यश केश, केश मुंडित किए हुए सन्यास वेश को मैं देख रहा हूं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा ये, और क्या कारण है कि जो कृष्ण है ब्रजनंदन कृष्ण, जो कि वास्तव में प्राण है, जीवन है, श्रीमती राधारानी के प्राण है, लाइफ एंड सोल है, उनको सन्यासी के रूप में भटकना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट जो है एकांत में रहते और क्रंदन करते, रोते, उनके से आंखों से आंसू आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो समझ गए गोपाल भट्ट के भाव को कि उनके हृदय में क्या बात चल रही है। तो गोपाल भट्ट रोते 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 क्या हुआ, वो धीरे धीरे फिर निद्रा में प्रवेश कर गए। जब वो सो रहे थे, जब विश्राम कर रहे थे, तो उनको सपना आया। सपना में उन्होंने क्या देखा, सपने में उन्होंने नवदीप की लीला देखी। गोपाल भट्ट ने नवदीप की लीला देखी और देखा कि किस तरह निमाय अपने परिकरों के साथ नवदीप में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी नींद टूटी गोपाल भट्ट की, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा। और चैतन्य महाप्रभु को देखा, फिर एक और आश्चर्य देखा, चैतन्य महाप्रभु को एक ग्वाले के रूप में देखा, त्रिभंग रूप में देखा, मोर मुकुट के साथ देखा, वंशी के साथ देखा। और उसके बाद ही तुरंत एक ग्वाले का रूप देखकर फिर क्या देखा उन्होंने, तुरंत उन्होंने निमाय का रूप देखा। एक तो सपने में देखा था, अब साक्षात देखा उन्होंने, घुंघराले बाल, निमाय के माथे पे तिलक है, और फिर उसके बाद गौर कांति है ना। इस सुंदर दृश्य को देखा और दृश्य को देखकर वो बहुत ही ज्यादा चकित हो गए। उनके नेत्र कमल सदृश हैं और चेहरे पर मुस्कान। तो ये दर्शन देखकर, इस प्रकार का दर्शन करके गोपाल भट्ट भावभोर हो गए, भावेश में आ गए। और उसके बाद जब ऐसा देखा उन्होंने, तो फिर उन्होंने क्या किया, साष्टांग प्रणाम किया। गोपाल भट्ट ने निमाय को साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही वो प्रणाम करके उठे, तो उठते क्या देखा उन्होंने, फिर से संन्यास वेश देखा उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु को देखा फिर से संन्यास वेश में। तो वो हैरान हो गए, सब दृश्य देखकर चकित हो गए, और महाप्रभु उनको सांत्वना देने के लगे, गोपाल चिंता मत करो, तुम जल्दी छुटकारा पाओगे इस बंधन से और वृंदावन आओगे, वहां तुम्हारी मुलाकात रूप और सनातन से होगी, और वो तुम्हें मेरे अंतरंग भाव के बारे में बताएंगे, और तुम उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायता करोगे, और साथ में तुम्हारे जो शिष्य हैं वो हर जगह प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपने गोद में लिया और अपने अश्रुओं से गोपाल भट्ट को नहला दिया। महाप्रभु भी रोने लगे और गोपाल भट्ट का पूरा शरीर भीग गया। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट को आशीर्वाद मिला, और महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा कि देखो, मैं तुम्हारे इस गोपाल से बहुत प्रेम करता हूं, मेरा पूरा आशीर्वाद है इसके साथ, तुम उसको शिक्षा देना लेकिन इसका विवाह मत करना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, इसका विवाह मत करना, ठीक है ना। तो महाप्रभु की शिक्षा। अब महाप्रभु जब वहां रह रहे थे तो वेंकट भट्ट के साथ एक तरह से मित्रता सी हो गई, और उनके बीच में कई प्रकार की वार्तालाप चलते हैं। वेंकट भट्ट जो है वो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, विशेष रूप से जो सी संप्रदाय के जो भक्त हैं वो तो लक्ष्मी नारायण के ही उपासना करते हैं, और यहां तक कि उनका यही विश्वास रहता है कि वैकुंठ से ऊपर कुछ नहीं है, लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान श्री नारायण जो है वही स्वयं भगवान है, वही सभी कारणों के कारण है। और कृष्ण और नारायण में जहां तक लीलाओं के पर आधारित, लीलाओं में सिर्फ वही बोलते हैं कि लीलाओं में ठीक है, कृष्ण की लीला रासलीला है और उसमें आनंद वर्धन होता है, लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं है, मूल स्रोत तो भगवान नारायण ही है। और यहां तक ये भी विश्वास है कि कृष्ण भी जो है नारायण के अवतार है, ऐसा वो सोचते हैं। दक्षिण भारत में ये प्रथा है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले तक, चैतन्य महाप्रभु जब तक प्रकट नहीं हुए थे, हमारे भारतवर्ष में जितने वैष्णव संप्रदाय भी थे, विशेष रूप से श्री संप्रदाय था, उनका भी यही मानना था कि वास्तव में कृष्ण नारायण के या विष्णु के अवतार है। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ये पूर्ण रूप में स्थापित हुआ है, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया इसको। जैसे आप जानते हैं कि दक्षिण भारत जब गए थे तो आदिकेश्वर मंदिर से श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता लेके आए थे, और साथ में कृष्ण कर्णामृत भी लेके आए थे, श्रील भील मंगल ठाकुर के द्वारा लिखित, और उसके द्वारा उन्हें प्रमाणित किया था। अब वेंकट भट्ट के साथ उनका वार्तालाप हुआ, वेंकट भट्ट से उन्होंने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया उन्होंने, एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी कांता वक्षसिता पतिव्रता शिरोमणि अमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक सादी होए कीन चाहे तहार संगम। तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भट्ट तुम्हारी लक्ष्मी ठाकुरानी वैकुंठ पति नारायण वक्ष विलासिनी पतिव्रता शिरोमणि है, हमारे ठाकुर कृष्ण गाय चराने वाले गोप हैं, तो भी साध्वी लक्ष्मी कृष्ण के संग की कामना करती है, इसका क्या कारण है। भट्ट ने कहा, कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं, कृष्ण में नारायण की अपेक्षा लीला चातुरी और रास विलास आदि की अधिकता है, इसलिए यदि कोतुवश लक्ष्मी कृष्ण संगम सुख की कामना करें तो उन्हें पातिव्रत्य धर्म के नाश होने की संभावना कहां है। तो महाप्रभु कहते हैं ये तो ठीक है, पर कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी कितना कुछ जप तप और व्रत आदि करती हैं तो भी उनका संग प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। तो लक्ष्मी जी तो बहुत तपस्या कर रही हैं, बेल वन में जप तप इत्यादि कर रही हैं और आज भी कर रही हैं, फिर भी क्या कारण है उनको ब्रज में प्रवेश नहीं मिल रहा है, ब्रज की लीला में प्रवेश नहीं मिल रहा है, या विशेष रूप से उनको रास लीला में प्रवेश नहीं मिल रहा है। शिव जी को मिल गया, महादेव को मिल गया था, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं मिला। वो भगवान नारायण की अंतरंगा शक्ति है, उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। शास्त्र कहते हैं कि श्रुतियों ने भी तप कर कर कृष्ण को पा लिया, पर लक्ष्मी आज तक ना पा सकी, इसका क्या कारण है? भट्ट ने कहा, प्रभु यहां मेरी बुद्धि काम नहीं करती। वास्तव में अगर दक्षिण भारत जाएं, ये बात सही है, अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे, आप रामेश्वरम तक चले जाइए या केरला के किसी भी भाग में जाइए, तमिलनाडु के किसी भी भाग में जाइए, वह राधा रानी को कोई जानता ही नहीं। एक कृष्ण का मंदिर जरूर है चेन्नई में, पार्थ सारथी का मंदिर है वहां, लेकिन राधा रानी नहीं है वहां। राधा रानी आपको कहीं नहीं मिले दक्षिण भारत, यह उनका दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए यह भी पहले से ही व्यवस्था होती है भक्तों के लिए कि जो जिस भाव में है उसको उस स्थान में जन्म दे दिया जाता है। ये यथामाम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजाम्ये, जिस तरह का भजन होगा उस तरह का आपको जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। तो जो दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं उनको मौका मिलता है श्री संप्रदाय के अनुगत्य होने का, ताकि वो अपने इच्छाओं को पूरा कर सके और लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सके। जो उत्तरी भारत में है उनको मौका मिलता है राधारानी के शरण लेने का। इसलिए जो दिल्ली के जो भक्त हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रज बहुत करीब है, लेकिन कई बार भटक जाते हैं भक्त लोग वाले। फिर भी है, जो भी है अच्छा है। तो इस प्रकार राधा रानी की विशेष कृपा है उत्तरी भारत के जो भक्तों के ऊपर, और राधा रानी के जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, लक्ष्मी जी हैं, वो दक्षिण भारत में प्रकट होते हैं श्री संप्रदाय, इसलिए कहा जाता है। मेरी शुद्र बुद्धि कृष्ण की कोटि समुद्र गंभीर लीला को कैसे समझ सकती है? आप स्वयं श्री कृष्ण हैं, अपनी लीला के मर्म को जिसे जताएं वही जान सकते हैं। तो वेंकट भट्ट पहचान के चेतने महाप्रभु कृष्ण हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे कि क्या कारण है, लक्ष्मी जी को प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा है इस ब्रज लीला में। महाप्रभु कुछ हंसकर बोले, अच्छा तो सुनो, कृष्ण अपने माधुर्य से आकर्षित तो सभी को करते हैं, पर उन्हें पाता वही है जो ब्रज भाव से उनकी आराधना करता है। ब्रज के लोग उन्हें ईश्वर नहीं मानते। एक तो माया में लिप्त जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते कि वो परम भगवान है, और दूसरे योग माया में लिप्त हैं ब्रजवासी, जो ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। दोनों ही माया में है, वो योग माया में, हम मां माया में। तो मां माया में है वो भी तड़प रहे हैं, योग माया में तो आनंद ले रहे हैं, ये अंतर है। अंतर क्या है? जो योग माया के आश्रित हैं वो आनंद ले रहे हैं, ये जानते हुए, ये ना जानते हुए कि कृष्ण भगवान नहीं है, या ये जानते हुए कि कृष्ण भगवान नहीं है। वो तो जानते कि नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, इतना ऐश्वर्य दिखाया कृष्ण ने ब्रज में, लेकिन कभी ब्रजवासियों ने नहीं माना कि वो भगवान है। गिरिराजी भी धारण कर लिया, फिर भी बोला गर्ग आचार्य ने कहा था, हाँ स्वतः नारायण जैसे गुण होंगे, साक्षात नारायण प्रवेश कर गए हैं इसके भीतर, तभी ये गिरिराजी को धारण कर पा रहा है। कोई भी लीला करते, पूतना का वध करते या अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया, ये कितने भी असुरों को मारा, हमेशा गर्ग आचार्य ने कहा था कि इसमें नारायण जैसे गुण होंगे। इसी बात को बार बार नंद महाराज दोहराते। तो कृष्ण को तो वो अपने एक बालक के रूप में देख रहे थे, और माता यशोदा भी यहां तक जब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देख लिया कृष्ण के मुख में, तब भी माता यशोदा के ऊपर उनके ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल ने कृष्णानुशीलन भक्ति रोत्तमा। तो वास्तव में देखा जाए, ये श्लोक तो ब्रजवासियों के लिए, उत्तमा भक्ति ब्रजवासी कर रहे हैं जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि कृष्ण भगवान है। तो ये भी एक बाधा है ब्रज में प्रवेश करने के लिए कि कृष्ण भगवान है। हमने कृष्ण भक्ति का स्वीकार किया इसलिए क्योंकि कृष्ण परम भगवान है ना। अगर आपको पता चला कि कल कृष्ण परम भगवान नहीं तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई कन्विंस कर दे शास्त्रों के आधार पर कि कृष्ण परम भगवान नहीं है तो क्या करेंगे आप? भक्ति छोड़ देंगे कृष्ण की? ब्रजवासी नहीं छोड़ेंगे। ब्रजवासी को आप कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें वो कभी कन्विंस नहीं होंगे, उल्टा आपको गालियां देकर आपको भगा देंगे ब्रज से। उनके लिए तो राधा रानी सब कुछ है, उनके लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। ब्रज के लोग उन्हें ईश्वर नहीं जानते, इसलिए ब्रज में कोई उन्हें उखल से बांधता है, कोई उन्हें उनके कंधे चढ़ जाता है। ब्रज में सब कृष्ण को ब्रज नंदन के रूप में ही जानते हैं, अनादि अजन्मा भगवान के रूप में नहीं। तभी वह यानी कि यहां पर इतनी भक्ति करने के बाद, ये सब जानने के बाद, जब गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो वहां जाके पता चलेगा कि कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, या वहां पर इस प्रकार की अनुभूति होगी कि कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ये परिणाम मिलने वाला है सिद्धि प्राप्त करने के बाद। तभी वे उनसे पति पुत्र सखा आदि संबंध रखते हैं, यदि वे उन्हें ईश्वर रूप में जानते तो ये कदापि संभव ना होता। ऐश्वर्य ज्ञान इस प्रकार के मधुर संबंध में बाधक होता है, इसलिए ब्रजनंदन को प्राप्त करने के लिए ब्रज के लोगों के ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भाव से उनका भजन करना आवश्यक है। इसलिए भागवत के नायम सुखापो श्लोक में कहा गया है कि गोपिका सुद भगवान कृष्ण भक्तिमान व्यक्तियों को जैसे सुलभ है और अनायास प्राप्त होता है, वैसे देहाभिमानी व्यक्तियों या देहाभिमान शून्य ज्ञानी जनों को यहाँ तक कि भगवान के अपने ही आत्मबोध ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी आदि तक को प्राप्त नहीं होता। श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य गोपी भाव से ब्रजेश्वरी सुत श्री कृष्ण का भजन किया तो उन्हें ब्रज में गोपी देह प्राप्त हुई। श्रुतिचारी दंड गाने के ऋषि इनसे सब गोपी भाव के अनुगत्य हुए, तभी इनको ब्रज की लीला में प्रवेश मिला। और उस देह से उन्होंने श्री कृष्ण का भजन किया तो उन्हें ब्रज में गोपी देह की प्राप्ति हुई, और उस देह से उन्होंने श्री कृष्ण के साथ रासविलास किया। कृष्ण की गोप जाति है, गोपियां ही उनकी प्रयासी हैं। गोप जाति होने के कारण वह किसी देवी या अन्य किसी स्त्री को अंगीकार नहीं करते। गोप हैं तो गोपी को स्वीकार करें नहीं। लक्ष्मी ने अपने उसी देह से कृष्ण के संग की कामना की, यानी कि वो वैकुंठ का ऐश्वर्य भाव को नहीं त्यागना चाहते लक्ष्मी, तो इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिल रहा। गोपियों का अनुगत्य स्वीकार कर रागानुगा भाव से उनका भजन नहीं किया, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। गोपी देह छोड़कर और किसी देह से कृष्ण को प्राप्त कर उनके साथ रास विलास संभव नहीं है, यही भागवत में व्यासदेव नायम श्लोक का आशय है। वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण स्वयं भगवान है और उनका भजन ही सर्वश्रेष्ठ भजन है। उनको इस भ्रम को दूर करना ही महाप्रभु के प्रयास का उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण और नारायण के तत्व को समझाते हुए उनसे आगे कहा, भट्ट तुम इससे तनिक भी संशय ना करना कि स्वयं भगवान नारायण नहीं श्री कृष्ण है। नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है, इसलिए श्री कृष्ण लक्ष्मी का मन हर लेते हैं पर नारायण गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते। नारायण की कौन कहे, स्वयं कृष्ण गोपियों से प्रयास करने के उद्देश्य से स्वयं कृष्ण भी जब चतुर्भुज रूप धारण करते हैं तो क्या होता है, तब भी गोपियां जो है उनको स्वीकार नहीं करती हैं, उनसे आसक्त नहीं होती हैं, है ना। यही तो रूप है अलारनाथ का जगन्नाथपुरी में जो आप देखते हैं, वो भगवान विष्णु का रूप नहीं है, वो भगवान कृष्ण का रूप है। भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया गोपियों का परिहास करने के लिए, लेकिन गोपियों ने उस रूप को स्वीकार नहीं किया। वो तो तब भी उनसे पूछने लगे कि आप जानते हैं कृष्ण कहाँ है, किस दिशा में गए हैं। लेकिन जहां तक कृष्ण और नारायण के तत्व की बात है, तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व में कोई भेद नहीं है। तत्व में भेद करने से क्या होता है, अपराध लगेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि तत्व में भेद नहीं करना चाहिए, विश्व तत्व है और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद किसमें है, भाव में है। भेद किसमें है, रस में है, लीलाओं में है। इस कारण से जो है भेद है, अन्यथा कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से चतुर्मास से पूरा हुआ और वेंकट भट्ट के साथ इस प्रकार से हास्यप्रद वाद विवाद या संवाद चलता रहा चार महीने तक। और उसके बाद समय आया चैतन्य महाप्रभु का जाने का, और परिवार के सभी सदस्य बड़े दुखी हुए कि चैतन्य महाप्रभु अब जाने वाले हैं, घर छोड़ के जाने वाले हैं। और साथ में उन्होंने गोपाल भट्ट को भी सांत्वना दी कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी और तुम्हें जल्द ही वृंदावन वास मिलेगा, रूप सनातन का सानिध्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को सुझाव दिया, और जब तक उनके माता पिता जीवित हैं तब तक वो उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और तदुपरांत जब उनके माता पिता नहीं रहेंगे तो वृंदावन चले आए। तो गोपाल भट्ट बहुत जल्द ही पारंगत हो गए, दक्ष हो गए शास्त्रों में, बहुत बड़े विद्वान हो गए। और यहां तक उन्होंने फिर मायावाद का बहुत खंडन किया, बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान उनके साथ शास्त्रार्थ करने आते, लेकिन बड़ी आसानी से गोपाल भट्ट उनको परास्त कर देते। और साथ में नृत्य और संकीर्तन में, यानी कीर्तन में, नृत्य में भी बहुत ज्यादा दक्ष थे। इसलिए आज भी राधारमण मंदिर में राधारमण जी के सामने जो है नृत्य किया जाता है, वहां उनके सामने कीर्तन भी होता है, राधारमण जी की प्रसन्नता के लिए और गोपाल भट्ट की प्रसन्नता के लिए, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार मुरारी गुप्त ने कर्चा में लिखा, अपने कर्चा में लिखा है कि गोपाल भट्ट बचपन में अपने मित्रों के साथ खेले नहीं जाते थे, बल्कि क्या करते थे, कीर्तन में उनकी रुचि थी बचपन से, नृत्य में रुचि थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। और जैसे ही उनके माता पिता ने शरीर छोड़ा तो उनको लगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए खूंटे से किसी बछड़े को बांधा हुआ है और बछड़े को छोड़ दिया जाए, खूंटे से छोड़ दिया जाए, तो बछड़ा सीधा क्या करता है, अपनी माता के पास, गाय के पास जाता है। तो उसी तरह से गोपाल भट्ट जी गोस्वामी घर से निकल पड़े वृंदावन की ओर, वृंदावन चल पड़े। वैसे तो चाहते तो वो नीलाचल या जगन्नाथपुरी चले जाते चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें आज्ञा मिली थी श्री चैतन्य महाप्रभु से कि वो यहां से कहां जाएंगे, सीधे वृंदावन जाएंगे, जगन्नाथपुरी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है इस चार महीने के बाद, इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, और किस रूप में दर्शन किया वो बाद में बताएंगे आपको। तो इस प्रकार वो पहुंचे, वृंदावन पहुंचे। जब वृंदावन पहुंचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहां पे उनको मिले, और बहुत ज्यादा वो भी आनंदित हुए। उन सभी भक्तों ने, वृंदावन के सभी वैष्णवों ने, वैष्णव समाज ने गोपाल भट्ट का हार्दिक स्वागत किया, और साथ में उन्होंने एक संदेश भेजा, श्री चैतन्य महाप्रभु को संदेश भेजा। उन दिनों चिट्ठी भेजना आसान नहीं होता था, उस समय कोई ईमेल की कोई फैसिलिटी नहीं थी, मोबाइल्स के द्वारा मैसेज भी नहीं भेज सकते थे, एसएमएस करने का कोई उस समय चारा नहीं था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं आई थी कि ट्रेन शुरू हो जाए, है ना, तो उस समय तो किसका राज्य था, यावणों का राज्य था। तो यावणों के राज्य में ना ट्रेन था, ना कार थी, कुछ भी नहीं था, बसेस भी नहीं थी, बैलगाड़ी होती थी, लेकिन बैलगाड़ी बहुत महंगी पड़ती थी, तो बैलगाड़ी से अगर वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाना चाहे तो बहुत महंगा पड़ता था। तो किसी को भेजना होता था, चल के भेजे, चल के जाए कोई, तो बहुत दिन लगते थे, तो इसलिए बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए बहुत ही आपातकालीन स्थिति में या बहुत अगर महत्वपूर्ण कार्य होता था तब किसी संदेशवाहक को भेजा जाता था। यहां तक कि कबूतरों को भी वो प्रशिक्षित करते थे और कबूतर के माध्यम से भी संदेश भेजते थे। कबूतर जो इतने प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित किए जा सकते हैं कि अगर उनको आप कुछ बता दें कि कहाँ पहुंचाना है तो कबूतर पहुंचा देते। तो कबूतरों को भी प्रशिक्षित करते थे। इस तरह से राजाओं के पास, जो मुसलमान राजा थे उनके पास ऐसे कबूतर हुआ करते थे, उड़ के जाते थे और संदेश पहुंचाते थे। तो इसी तरह से ये संदेश पहुंचाया गया श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, जब उनको एक पत्र प्राप्त हुआ तो बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, और उन्होंने सभी को, चैतन्य महाप्रभु जितने भी वहां परिकर थे, उनके भक्त थे, सभी पार्षदों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बताया, उनको बताया, सभी को बताया कि किस तरह उनके घर पे चतुर्मास से बिता के समय उन्होंने उनके घर में बिताए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी फिर पत्र लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे, और उन्होंने पत्र लिखा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, एक संदेशा भेजा उन्होंने, और संदेशा भेजा साथ में क्या लिखा उन्होंने, साथ में क्या भेजा जैसे उन्होंने बताया था शुरू में, उन्होंने कोपिन भेजा अपना, चैतन्य महाप्रभु ने अपना कोपिन भेजा, भैरवास भेजा, और साथ में आसन भेजा, एक आसन भी भेजा। तो गोपाल भट्ट को जब ये पता चला तो वो भाव विभोर हो गए। ये जो समय था भाव भक्ति का समय था, अधिकांश जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे उस समय कम से कम भाव भक्ति के स्तर पर थे, कम से कम। इसलिए थोड़ा सा भी अगर कोई कृष्ण के बारे में सुनता भाव के सारे लक्षण प्रकट हो जाने थे। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेशा है इसी कारण से, इसी से ही उनके सारे भाव सात्विक भाव जो है प्रकट हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी के शरीर में। और बार बार गोपाल भट्ट गोस्वामी आसन को देखकर, डोर कोपिन को देखकर, बहिर्वास को देखकर, बार बार गोपाल भट्ट गोस्वामी इन तदीय वस्तुओं को देखकर बार बार वो प्रणाम करते रहे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप इस आसन को स्वीकार करें, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने बताया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कि आसन बेचकर ये संकेत दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि आप उस आसन को स्वीकार करना होगा और शिष्य स्वीकार करने होंगे, आपको दीक्षा देनी होगी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बहुत चिंता थी शिष्य परंपरा की, उन्होंने इसलिए स्वयं तो दीक्षा नहीं दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर दो गोस्वामियों को विशेष रूप से नियुक्त किया था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को और साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस प्रकार से उनको बताया गया था। तो इसलिए विशेष रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा दी। श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य वो उनको अंश, एक अंश श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अंश जो है श्रीनिवास आचार्य में प्रकट हुआ था, श्रीनिवास आचार्य में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था केशव भारती से, तो केशव भारती को क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में कि कल रात को मुझे सपना आया है ना, और मैंने ये मंत्र सुना था, वो मंत्र कौन सा है आप जानना चाहते हैं, और मैं भी जानना चाहता हूं कि ये मंत्र किस तरह का मंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में, केशव भारती गोस्वामी महाराज के कान में उन्होंने क्या वो मंत्र सुना दिया। चैतन्य भागवत में इस प्रकार वर्णन आता है। तो केशव भारती को इस तरह से उन्होंने दीक्षा दी, क्योंकि उन्होंने मायावाद संप्रदाय से, शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने वैष्णव मंत्र फूंक दिया केशव भारती के कर्णों में। और फिर केशव भारती ने कहा ये मंत्र हो, ये मंत्र तो सर्वोच्च मंत्र है, ठीक है अब संन्यास लेने का समय आ गया है। तो संन्यास दंड जब पकड़ा है तो वही मंत्र केशव भारती ने फिर से चैतन्य महाप्रभु को सुना दिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संन्यास लिया। तो इसी तरह से लगता है कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया पहले उनको दीक्षा देकर, इसी तरह से महाप्रभु जो है वो प्रकट हुए, इस तरह से लगता है पुनः प्रकट हुए, उनका एक अंश प्रकट हुआ श्रीनिवास आचार्य में, और श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली। तो इस प्रकार ये समानताएं देखने को मिलती हैं। राधा रमन जी के विग्रह के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज्ञा दी थी कि वो शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करें, और ये भी बताया था, इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है, ये भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि आप शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करें, और एक दिन ये शालिग्राम शिला राधा रमन जी के रूप में प्रकट होंगे। और एक भक्त हुए गोपाल कवि, उनके अनुसार महाप्रभु ने सपने में आके कहा था गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि आप गंडकी नदी जाए, गंडकी नदी जानते हैं कहां पर है, नेपाल में, वहां जाए, वहां पे आपको शिलाएं प्राप्त हो, लेकिन जो सबसे पहली शिला आपको प्राप्त होगी वो दामोदर शिला प्राप्त होगी, और वो दामोदर शिला ही वास्तव में राधा रमन जी के रूप में प्रकट होगी, और 11 शिलाएं आपको मिलेंगे, तो उनको भी आप स्वीकार करेगा। तो कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो कूर्म आकृति धारण किया था श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अंतलीला में, वही कूर्म रूप जो है वो बाद में कूर्म आकृति का जो रूप धारण किया था वही शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुआ, कहां पर? गंडकी नदी में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी निकल पड़े चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से, वृंदावन से निकल पड़े नेपाल की ओर, और सबसे पहले वो सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर जानते हैं, सहारनपुर यूपी में है। तो वहां में देवबंद में श्री चैतन्य महाप्रभु और क्षमा करें गोपाल भट्ट गोस्वामी माधव प्रसाद शर्मा के घर पे रुके, जो वहां के जागीरदार थे, जमींदार थे, उनके घर पे रुके, और गोपाल भट्ट की बहुत सेवा की इन्होंने, और जब सेवा की तो बहुत प्रभावित भी हुए उनके तेज को देखकर, उनके प्रभाव को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि मेरे दोस्त पुत्र हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप इनको दीक्षा दें। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनके पुत्रों को दीक्षा दी, दामोदर पंडित, दामोदर और गोपीनाथ, ये दो शिष्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी। और देवबंद से उन्होंने यात्रा की, नेपाल के जंगलों में निकले और गंडकी नदी जहां पे थी वहां पहुंचे। जब स्नान कर रहे थे, स्नान करने से पहले जब उन्होंने जल गंडकी नदी के अंदर रखा और जल वो अर्पित कर रहे थे, किसको? सूर्य को अर्पित करने लगे थे, तो उसी समय एक शालिग्राम शिला उनके हाथ में आया, और वो शालिग्राम शिला कैसा था? दामोदर शिला। दामोदर शिला हमारे गुरु महाराज के पास भी है, और शिला में एक सफेद ऐसा लगता है कि धागा लिपटा हुआ है, शिला में शिला है उसमें ऐसा लगेगा धागा सा लिपटा हुआ है, वही दामोदर शिला है। शिलाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे हमारे गृह सहेंद्र प्रभु के पास 2000 से ज्यादा शिलाएं उनके पास थी, और हैं भी अभी शिलाएं, वो तो उनके बाद भी वो शिला है। तो ये शिलाएं गंडकी नदी में प्राप्त होती हैं, तो गुरु की कृपा से ये शिलाएं प्राप्त होती हैं, और ये शिलाएं जो होती हैं साक्षात कृष्ण हैं। शिलाओं का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, शिलाओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, शिलाएं साक्षात कृष्ण होते हैं। और शिलाएं जहां पर होती हैं उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी स्थान है वो सब तीर्थ स्थान बन जाता है, यानी कि यहां पर शिलाएं जो है, अगर शिलाओं की पूजा सेवा चल रही है तो 10 किलोमीटर के इलाके में जितना भी स्थान है पंजाबी बाग में ये सब तीर्थ स्थान बन गया है। हरि वाह। तो इस प्रकार शालिग्राम शिला की वो सेवा करते थे, वृंदावन में वापस आए, और रासथली निधि वन में जहां रासलीला होती है वहां उन्होंने भजन कुटीर बनाया। ये भजन कुटीर कहां पर है? राधा रमन जी का मंदिर जो है जहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है, उससे पहले ही वहां पर एक भजन कुटीर है, वो स्थान जहां पे राधा रमन जी प्रकट हुए थे, प्रकट स्थली, वो प्रकट स्थली ही उनकी भजन स्थली है। तो वहां पे वृक्ष हुआ करता था, और वृक्ष में वो क्या करते थे, एक पिटारी में इन शिलाओं को रखते थे। 11 अन्य शिलाएं भी प्राप्त हुई थी इस शिला के साथ, लगभग 12 शिलाएं थी। ये सारी शिलाएं जो हैं वो उन्होंने पिटारी में रखी हुई थी, और उसको वो लटका देते थे पेड़ की टहनी में और झुलाया करते थे, शालिग्राम शिला को झुलाते थे। तो अधिकांश समय जो उनका वो शिलाओं की सेवा में लगता। और ये बताया गया है भक्ति रत्नाकर में, ये राधा रमन जी के बारे में ये बात बताई गई है जो आप सुन सकते हैं। भक्ति रत्नाकर में ये बताया गया है कि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तीनेर सुख वक्ष श्री चरण, तीन प्रभु एकत्र दर्शन एक थाई, एछे परिपाटी पूर्वे चिंतल घोषाए। तो भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि राधा रमन जी का जो चरण है वो मदन मोहन जी के चरण जैसा है, और नाभि से लेकर यहां तक गर्दन तक जो स्थान है वो गोपीनाथ जी जैसा है, और गर्दन से लेकर उनका जो मुखारविंद है शीश तक वो गोविंद देव जैसा है। जो सबसे आखिरी दर्शन किया था द्वापर युग में या द्वापर युग के अंत में, तो सबसे आखिर में जिसने दर्शन किया था वो थी माता उत्तरा। माता उत्तरा ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, उसके बाद फिर उसके आगे किसी ने दर्शन नहीं किया। तो माता उत्तरा जानती थी कृष्ण का साक्षात देखा था, लेकिन उससे पहले ही महाराज वज्रनाभ जो कि अनिरुद्ध के पुत्र थे, महाराज प्रद्युम्न के पुत्र पोते अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, तो विग्रहों की वो स्थापना करना चाहते थे, तो ने मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के विग्रह को स्थापित कर दिया। तो उनको दर्शन कराया, माता उत्तरा का दर्शन करा, माता उत्तरा को दर्शन कराया वज्रनाभ ने, कि वज्रनाभ तो नहीं देख पाए थे। तो माता उत्तरा ने फिर बताया कि हाँ, ये मदन मोहन जी के जो चरण है ये कृष्ण जैसे हैं, गोविंद देव जी का जो मुखारविंद है वो कृष्ण जैसे हैं, इनके जो वक्ष, गोपीनाथ जी के जो वक्षस्थल हैं, हाँ ये कृष्ण जैसे हैं, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, राधा रमन जी में दिखाई पड़े बाद में, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो यानी कि राधा रमन जी का हम दर्शन करते हैं तो साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, ये सौभाग्य आज भी हमें प्राप्त होता है। आपने देखा राधा रमन जी को, कभी मुस्कुराते हैं दान दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं दान। राधा रमन जी का बड़ा अद्भुत ये हर्ष विग्रह है। तो एक धनाढ्य व्यक्ति वहां पे व्यापारी आया था वृंदावन में, और सभी मंदिरों में वो कुछ ना कुछ दान कर रहा था, भेंट कर रहा था, श्रृंगार के सामान और काफी धन इत्यादि वस्त्र हर्ष विग्रह के जो पहनाए जाते हैं। तो गोपाल भट्ट की शुरू से लालसा थी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या रखा था उनको कि एक दिन जो है ये शालिग्राम शिला राधारमण जी के रूप में प्रकट होंगे, तो ये चिंता कर रहे थे, दिन रात उनकी ये चिंता होती थी कब ये अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होंगे। और जब व्यापारी ने दान दिया तो उसके बाद उनकी चिंता और बढ़ गई। क्या चिंता हुई उनकी, ये व्यापारी मंदिरों में दान दे रहा है लेकिन मैं कैसे दान स्वीकार करूं, मेरे पास तो कोई विग्रह नहीं है और अभी तक तो ये शिला जो है विग्रह के रूप में प्रकट ही नहीं हुए। तो फिर भी व्यापारी ने बहुत जब कहा कि आप ले लीजिए, सेवा में लगा लीजिएगा, बाद में भी आपके पास विग्रह आ सकते हैं, तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रृंगार का सामान स्वीकार कर लिया, वस्त्र इत्यादि स्वीकार कर लिया। तो बताया जाता है कि पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन 1542 में प्रातः काल में शालिग्राम शिला पिटारी से जब वो निकालने लगे, पिटारी जब उन्होंने खोली कि शालिग्राम शिला की सेवा प्रारंभ करूं, तो शालिग्राम शिला फूटा एकदम से और उसमें से राधा रमन जी का विग्रह प्रकट हुआ। हरि बोल। आज भी राधा रमन जी का दर्शन करते हैं जो पुजारी लोग जानते हैं, जो राधा रमन जी के पीछे का हिस्सा है, कमर का हिस्सा है, उस शालिग्राम शिला का आधा भाग अभी भी है और आधा भाग जो है प्रकट हो गया विग्रह के रूप में, यानी वो मार्क अभी भी है, शिला का मार्क अभी भी है पीछे राधा रमन जी के विग्रह के पीछे, जो हम देख नहीं पाते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, तो हाफ पोर्शन शिला का अभी भी है, वो मार्क अभी भी है। तो ये राधा रमन जी का विग्रह बहुत ही ज्यादा अद्भुत विग्रह है, इनके नाखून भी पूरे हैं, उंगलियां चिपकी हुई नहीं है, अधिकांश विग्रह जो होते हैं उनकी उंगलियां चिपकी रहती हैं, नहीं, इनकी उंगलियां सारी खुली हुई हैं, पांचों उंगलियां खुली हुई हैं और पांचों उंगलियों में नाखून पूरे हैं, हाथ में लकीरें भी आप देख सकते हैं। और जब उनको सुलाते हैं तो कई बार पुजारियों का अनुभव होता है कि जैसे बच्चे का जो शरीर होता है इतना मुलायम है, उनके पाँव का इतना मुलायम, कभी कभी उनको अनुभूति होती है इस प्रकार, और कभी कभी तो वो पलकों को झपकते हुए भी देख लेते हैं, पलकें काफ़ी झपकती हैं, और कभी कभी राधा रमन जी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, दान दिखाई देता है, और कई बार वो मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई पड़ता, ये तो हम लोगों ने भी चित्र में देखा होगा। तो ये राधा रमन जी एक प्रमाण है हमारे लिए अर्च विग्रह, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि विग्रह में और कृष्ण में, साक्षात कृष्ण में, उनके सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया था एक दफे कि जब आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे वृंदावन में तो मैं वृंदावन जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार सभी इंतजार कर रहे थे कि काफी लीला स्थलियों को पता लगाया जा चुका था, अर्चे वगैरह की स्थापना भी हो चुकी थी, अब सब इंतजार कर रहे थे कि अब कब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। तो समस्त गोस्वामी जो है वो सब इंतजार कर रहे थे। तो गोस्वामियों को सूचना मिली कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो शिला थी वो विग्रह के रूप में प्रकट हुई है, राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुई है। तो सभी गोस्वामी वो वहां पर आए दर्शन करने के लिए। तो हम देखते हैं कि राधा रमन जी के विग्रह के सामने राधा रानी नहीं दिखाई पड़ती है, है ना, उनका केवल श्रृंगार होता है, तो राधा रानी नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही वास्तव में राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु जानते ही हैं कि वो तो राधा कृष्ण के युगल रूप ही है। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो राधा रमन जी, कई बार बोलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो राधा रानी की स्थापना नहीं की, स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राधा रमन और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही स्वरूप है। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी रस और माधुर्य का रसास्वादन कर रहे थे वृंदावन में, अब तो राधा रमन जी उनके सामने प्रकट हो गए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे हमने बताया कि बहुत ही ज्यादा नम्र थे और शिष्य नहीं बना रहे थे, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के कहने पर उन्होंने शिष्य बनाना शुरू किया, और कई शिष्यों उनके प्रमुख शिष्य थे श्रील श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामी अष्टकम भी लिखा बाद में षट गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पश्चिम दिशा के जो लोग हैं उनको दीक्षा दी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने पूर्वी दिशा के जो लोग हैं यानी कि गौड़ देश के लोग हैं उनको दीक्षा दी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अब चिंता की कि आगे चलकर राधा रमन जी की सेवा कैसे होगी, क्योंकि अगर आप वैरागी हैं सन्यासी हैं तो पता नहीं कब कहाँ चले जाएं, है ना, गृहस्थ होंगे तो एक ही स्थान में रहेंगे तो सेवा भी चलती रहेगी, और उनकी जो आगे वंश परंपरा है वो भी सेवा करेंगे। तो गोपीनाथ गोस्वामी जो है वो बहुत उच्चकोटि भक्त थे, आप जानते ना, जिनको दीक्षा दी थी जब वो नेपाल जा रहे थे तो रास्ते में मिले थे, और वहां पे दो लोगों को दीक्षा दी थी, गोपीनाथ गोस्वामी और दामोदर गोस्वामी। तो गोपीनाथ गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी कहा था कि आप विवाह कर लीजिए ताकि आगे वंश परंपरा आपकी जो है वो राधा रमन जी की सेवा करते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की, मैं ये गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसना चाहता, है मैं अकेले रहना चाहता। तो फिर उन्होंने फिर दामोदर गोस्वामी को कहा तो वो तैयार हो गए, और उन्हीं के वंश परंपरा में आज जितने भी गोस्वामी या राधा रमन जी के मंदिर में वो सब सेवा कर रहे। तो 40 ऐसे गृहस्थ हैं जिनको गोस्वामी कहा जाता है आज भी। तो 40 गृहस्थ परिवार हैं जो टर्न बाय टर्न आता है, उनका नंबर लगता है, और वो सभी राधा रमन जी की सेवा करते हैं। तो वो सब उन्हीं की परंपरा में है, यानी कि वंश परंपरा में है, दामोदर गोस्वामी की वंश परंपरा में है। तो इस प्रकार से उन्होंने इनको सौंप दिया, ये कार्य सौंपा, और इस कारण से देखते हैं कि आज भी जो है ये सेवा चल रही है। उनका तिरुभाव 1586 में हुआ, ठीक 100 साल के बाद। चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ था 1486 में, और ठीक 100 साल बाद तिरुभाव हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी का। उस समय उनकी उम्र थी 85 साल की, 85 ईयर्स के थे, और उनकी समाधि हम जानते हैं राधा रमन जी के मंदिर के साथ में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि है। और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें हरि भक्ति विलास बड़ा प्रमुख ग्रंथ है। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि हरि भक्ति विलास श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखा, लेकिन जब बहुत ज्यादा शोध किया गया तो ये पता लगाया गया कि वास्तव में मूल रूप से इस ग्रंथ की रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी, लेकिन संक्षिप्त रूप में, और बाद में इसी संक्षिप्त रचना को इसको विस्तार से वर्णन किया श्रील सनातन गोस्वामी। क्षमा करिए, हम उल्टा बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने संक्षिप्त रूप में इसको लिखा था, और बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसको विस्तार से भी लिखित इसको कहते हैं, यानी कि विस्तार से उसको लिखा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और इसी तरह से उन्होंने षट संदर्भ कारिका, शिलक जी गोस्वामी ने षट संदर्भ के मंगलाचरण में लिखा है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, रूप और सनातन से प्रेरणा मिली है इस ग्रंथ को लिखने की। और उनके एक पुराने मित्र हैं दक्षिण भारत से जो आए हैं, जिन्होंने पहले से ही एक ग्रंथ की रचना की है, उसी ग्रंथ को मैं दोबारा प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि वो सिस्टमैटिक नहीं थे। वो ग्रंथ जो पहले लिखा गया था वो एक सिस्टमैटिक रूप में प्रेजेंट नहीं किया गया था, इस कारण से मैं दोबारा इसको विस्तार से और सिस्टमैटिक वे में इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि वो पुराने वैष्णव कौन है। जी गोस्वामी का कहना है कि वो पुराने वैष्णव कौन है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी और दक्षिण भारत से आए हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इन्होंने लिखा जरूर था लेकिन ये ग्रंथ ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए शिलर जी गोस्वामी ने उसको विस्तार से इसको प्रस्तुत किया षट संदर्भ के रूप में। और एक षट क्रिया सार दीपिका भी लिखा, जिसमें 14 संस्कारों के बारे में, जैसे उपनयन संस्कार है, विवाह का संस्कार है, जो कि हरिभक्ति लास में नहीं दिया गया है, उसके बारे में लिखा। संस्कार दीपिका एक और ग्रंथ लिखा, जिसमें संन्यास के बारे में, अवधूत वेश के बारे में, परमहंस वेश के बारे में लिखा गया है संस्कार दीपिका में। और कृष्ण करुणामृत के ऊपर भी उन्होंने एक टीका लिखी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। तो ये सब जो है उनके थोड़ा जीवन के बारे में था, जीवन चरित्र के बारे में था। एक भक्त हुए हैं मनोहरदास, उन्होंने एक सूचक कीर्तन लिखा है। ये सूचक कीर्तन होता है जब कोई वैष्णव का तिरुभाव होता है तो इस प्रकार के भजन या कीर्तन गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो इसमें मनोहरदास क्या लिख रहे हैं, जब भी मैं श्रील गोपाल भट्ट प्रभु के सुंदर मुख कमल का दर्शन करता हूं, मेरे नेत्रों में अश्रुओं की बाढ़ आ जाती है। आपके असीमित गुणों के बारे में श्रवण करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आपके चंद्र के समान मुख और उगते हुए सूर्य के समान दीप्तिमान अधरों से आकर्षित होने के कारण कामदेव के 10 सुनहरे बाण मेरे हृदय को छेदन नहीं कर सकते। आपके सुंदर दांत मोतियों की माला के समान हैं। आपके आनंदपूर्ण शब्द मधुर अमृत से परिपूर्ण हैं। श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, राघव पंडित, कृष्णदास कविराज व लोकनाथ गोस्वामी के भक्तगण आपके जीवन हैं और आपके प्राण हैं श्री राधा रमण जी। अपने प्रेम से पूर्ण शरीर के द्वारा आप भगवान चैतन्य को प्रणाम करते हैं और एक मधु मक्खी की तरह, यानी कि भंवरे की तरह, आप उनके चरण कमलों से आसक्त हैं। आपने कृपा पूर्वक श्रीनिवास आचार्य को शरण प्रदान की है। आपका एकमात्र व्यवसाय है शुद्ध भक्तों का संग करना, रस का आस्वादन करना और गोपी भाव के दिव्य आनंद का आस्वादन करना। राधारमण की लीलाएं आपके मन में दिव्य गंगा की तरह बहती हैं। आप रसिक वैष्णों के शिरोमणि हैं और प्रेम रस का आस्वादन करते हुए आप भाववेश में प्रवेश कर जाते हैं। राधारमण के स्वाभाविक प्रेम के सागर, आप पतितों के मित्र हैं, आपके यश का गान पूरे ब्रह्मांड में किया जाता है। आपका रूप सबसे मधुर और कृपा से पूर्ण है और आपके असीमित गुण चिंतामणि के समान कार्य करते हैं। केवल एक बार जो ओ स्वामी, मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर लूं जो सभी मधुरता के सार हैं। बहुत जन्मों के बाद मुझे आपके नित्य परिकरों के सेवा करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बुरे कर्मों के कारण मैंने अपना जीवन इंद्र तृप्ति में भोग करने में व्यर्थ ही गवा दिया है। मेरा जीवन अपराधों से भरा हुआ है, परंतु मेरी एकमात्र आशा है आप जो करुणापूर्ण गुणों से परिपूर्ण हैं, इस पतित आत्मा का उद्धार करें। यद्यपि मेरा मन चंचल है और मैं लोभी व पापी हूं, फिर भी ये मनोहरदास आपको पुकारता है, कृपया मेरा तिरस्कार ना करें। तो इस प्रकार मनोहरदास ने स्तुति की है, ये रचना की है गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में। एक विशेष बात ये सोचने की ये है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये शिला प्राप्त हुई और जिस शिला से राधारमण जी प्रकट हुए, उसी तरह जिस तरह से खंभे से कौन प्रकट हुए थे, भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज की इच्छा से, है ना। प्रहलाद महाराज की इच्छा से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, और कभी कभी तो हम तिथि देखते हैं नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही मिलता जुलता संयोग है कि किस तरह से, जिस तरह से नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, उसी तरह से राधा रमन जी जो है वो किससे प्रकट हुए, शिला से प्रकट हुए। और भक्तों के लिए कैसे प्रकट होंगे भगवान, भक्तों के लिए प्रकट होंगे इस जप माला से, तुलसी की माला जो आप सबके बीट बैग में है कि नहीं। तो जब करते करते समय क्या आना चाहिए, एक ऐसा समय आना चाहिए जब इन्हीं मनकों से कौन प्रकट होंगे, आपके अपने इष्ट प्रकट होंगे और आपको दर्शन देंगे। तो हमारी झोली में शिला नहीं तो कम से कम जप माला तो है। तो इसी तरह से देखिए, हमारे बीच में एक भक्त रहे महेंद्र प्रभु, जो शिलाओं की सेवा करते थे और शुद्ध नाम का उच्चारण करते थे, दिन रात भजन में लगे रहते थे, प्रत्येक दिन 2 लाख नाम लेते थे, अपनी शिलाओं की सेवा करते थे। कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई श्रीमती राधा रानी की, कि श्रीमती राधा रानी को ले गए। नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए, राधा रानी का स्मरण करते हुए वापस ब्रज में, ब्रज की लीला में प्रवेश कर गए। तो ये कृपा आज भी है, उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद जी की इतनी महानता है। इससे क्या होता है, जब ऐसे भक्त का तिरभाव होता है तो श्रील प्रभुपाद जी का गौरव बढ़ता है, श्रील प्रभुपाद जी का यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है कि प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे शिष्य भी हैं आज, जो कि इस भारत से नहीं है, इस देश से नहीं है, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश से नहीं है, लेकिन इस देश में आए भजन करने के लिए, भजन करने के उद्देश्य से यहां पर आए, और भजन में परिपक्व होके इसी संस्था में रहते हुए, प्रभुपाद जी के शरण में रहते हुए, प्रभुपाद जी के मंदिर में, राधा श्याम सुंदर के मंदिर में उनकी सेवा करते करते, भजन करते करते उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी हरिनाम में उतनी ही शक्ति है जितनी की पहले शक्ति थी, हरिनाम में उतनी ही पवित्रता है जितनी की पहले थी, लेकिन आवश्यकता है समर्पण की। तो इंद्र प्रभु पूरे शरणागत थे प्रभुपाद जी के शरण में, पूर्ण रूपेण लिए हुए थे, प्रभुपाद में पूरा विश्वास था। इंद्र प्रभु ने बताया कि 1995 में सबसे पहली बार प्रभुपाद जी आए थे उनके सपने में, और उनको बता दिया था कि उनका स्वरूप क्या, 1995 में। कितने साल पहले, कितने साल पहले, 15 साल पहले ही बता दिया उनको। लेकिन भक्त कहते हैं विनम्र होते हैं, लेकिन उन्होंने स्थान छोड़ा नहीं, वो अब तो स्वरूप पता चल गया, यहां से निकल लो नहीं, लेकिन वो वहीं पर रहे प्रभुपाद जी के शरण में, राधा श्याम सुंदर के शरण में, राधा श्याम सुंदर के सामने नित्य कीर्तन करते रहे और भक्तों को भी कीर्तन में लगाते रहे। अब जानते कितने घंटे की रिकॉर्डिंग है उनकी, 9000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड जो उनका कीर्तन है 9000 आवर्स का है रिकॉर्डेड कीर्तन इंद्र प्रभु का। इतनी रिकॉर्डिंग तो किसी की भी नहीं होती है ना। तो हम इसलिए बता रहे थे शुरू में, गोष्ठानंदी इज भजनानंदी उस प्रीचिंग फ्रॉम वृंदावन, ये हम ऐड कर रहे हैं यहां शब्द फ्रॉम वृंदावन। ये वृंदावन में रहकर इंद्र प्रभु वो गोष्ठानंदी है जो भजनानंदी है, जो प्रचार कर रहे थे संकीर्तन के माध्यम से, वृंदावन में रहकर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में रहकर उन्होंने अपने कीर्तन के द्वारा संसार भर के जितने भी लोग हैं उनको प्रभावित किया। यह है ना असली प्रचार, जिस स्थान में है उसी स्थान में रहकर प्रचार किया, हरिदास ठाकुर की तरह। हरिदास ठाकुर कहां पर, एक स्थान में भजन, फूलिया ग्राम में गुफा के अंदर रहकर, गुफा के भीतर रहकर एक स्थान में रहकर हरिनाम ले रहे थे, लेकिन हजारों की तादाद में लेकर हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे लोग। सनातन गोस्वामी इसलिए कहा हरिदास ठाकुर को कि आपका प्रचार भी श्रेष्ठ है, आपका आचार भी श्रेष्ठ, इसलिए आप जगत गुरु हैं। ये होता है भजन का प्रताप, ये होता है भजन की सिद्धि, कि भजन करने वाला व्यक्ति जो है एक स्थान में रहकर ही पूरे संसार को आकर्षित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ये उनकी पवित्रता है ना, ये उनका शुद्ध नाम का उच्चारण है। यहां तक बताया जाता है कि इंद्र प्रभु को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु सपने में आकर उनको बोले कि आप आओ जगन्नाथपुरी और हरिदास ठाकुर की समाधि के पास रहकर 3 लाख नाम लो प्रत्येक दिन। लेकिन इंद्र प्रभु ने कहा कि मेरा मन तो क्या करे, राधा श्याम सुंदर के चरणों में है, मैं प्रभुपाद को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। देखिए कितना प्रेम था, वो चाहते तो चले आते तुरंत ही चले जाते, अरे महाप्रभु बुला रहे हैं फिर क्या दिक्कत है। और वो कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर की समाधि के पास बैठकर आप 300,000 नाम लो और आपके इस नाम उच्चारण से पूरे पृथ्वी पवित्र होगी, पूरा ब्रह्मांड पवित्र होगा। तो हमारी संस्था में इतने उच्च कोटि के जो है वैष्णव है आज भी उपलब्ध है, इसलिए हमें इधर उधर कहीं भी मुंह मारने की आवश्यकता नहीं। आयेंद्र प्रभु के इस त्रिभाव से प्रभुपाद जी का गौरव बढ़ गया है, इस्कॉन का गौरव बढ़ गया है और सभी भक्तों का गौरव बढ़ गया है। हम सबका सौभाग्य है, हम सबका क्या सौभाग्य है कि हमें ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहने का मौका मिल रहा है ना। तो प्रभुपाद जी का स्त्री दिन प्रतिदिन जो है यश बढ़ेगा, आप देखेंगे ये एक संस्था होगी, प्रभुपाद जी की एक संस्था होगी जिसमें आप देखेंगे कि महाप्रभु का आदमी चलता रहे, बंद नहीं होगा है ना। फले न परिच्छते, तो ये नाम भजन का रास्ता है। हमारा जो मार्ग है वो है नाम भजन, हमारा जो भजन का प्रोसेस क्या है नाम भजन। इसलिए शिक्षाष्टक में भी चैतन्य महाप्रभु ने नाम भजन के बारे में बताया, उन्होंने और कोई प्रोसेस के बारे में नहीं बताया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य चरितामृत उठा लीजिए या वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित चैतन्य भागवत, जब महाप्रभु तपन मिश्र को मिले पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश में, तो तपन मिश्र ये चिंता कर रहे थे उस समय, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य क्या प्राप्त होगा और उसका प्रोसेस क्या है। तो तपन मिश्र जिज्ञासा कर रहे थे लेकिन उनको उत्तर नहीं मिल रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, श्री श्री गौर सुंदर वहां पहुंचे, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, संन्यास लेने से पहले की घटना है, तो जब पूर्वी बंगाल गए थे लक्ष्य प्रिया जी को छोड़ के गए थे और वहां तपन मिश्र से मिले थे, तो तपन मिश्र ने पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु मुझे ये समझ नहीं आ रहा जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, किस तरह से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, चैतन्य भागवत में पूरा महामंत्र दिया है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तपन मिश्र को ये 16 जो शब्द है 32 अक्षरों वाला ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र का उच्चारण करो, आपको हर प्रकार के निरंतर इस हरिनाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण को आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को कहा व्यक्तिगत रूप से, हरिनाम इतनी शक्ति है, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते न स्मरण नियमते स्मरणे न काला। लेकिन क्या है, हमारा अनुराग नहीं है, दुर्देव में दृश्यम हाजनी न अनुरागा, तो इसलिए हम 6 गोस्वामियों से आज प्रार्थना कर सकते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से, 6 गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इनके इनकी प्रार्थना से क्या होता है हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए 6 गोसाई कोरी चरण वंदन जाओ हेते विघ्नानाश अभिष्ट पूरण, है ना, मनोभिष्ट प्राप्त हो जाएगा हमें, हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर हम 6 गोस्वामी की शरण में रहेंगे, प्रभुपाद जी की शरण में रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें 6 गोस्वामियों के पद चिन्ह में चलना है, 6 गोस्वामी ने जो दिया है वो परिपूर्ण है, जो 6 गोस्वामी ने प्रोसेस दिया है वो परिपूर्ण है, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे इस संस्था में प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है भक्तों के ऊपर, और प्रभुपाद जी की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? सभी नहीं जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं, दुर्घटना मत भूलिएगा, ये तो बहुत अच्छी घटना है, दुर्घटना मतलब है अच्छी घटना नहीं है, जो ये बहुत अच्छी घटना है ना, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, इट्स कॉल्ड फायर ऑफ सेपरेशन, फायर ऑफ सेपरेशन जानते हैं आप, विरह अग्नि, विरह की अग्नि के कारण अब और नहीं रह जाता है संसार में, विरह के कारण अग्नि जल रही है, लेकिन इस कारण से अग्नि नहीं जली ये मत सोच लीजिए, लेकिन फायर ऑफ सेपरेशन है ये, फायर ऑफ सेपरेशन। इस विरह इस प्रकार की घटनाओं से क्या संकेत मिलता है, संकेत ये मिलता है कि भक्ति इज नॉट सो चीप, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन इतना सस्ता नहीं है। बहुत सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना होगा, कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। और ये कष्ट क्यों आते हैं भक्तों के जीवन में? इसलिए आते हैं कि संसार से अनासक्त हो जाए हम लोग। जितना कष्ट आएगा उतना संसार से हम अनासक्त होते जाएंगे। संसार फिर रहने लायक नहीं आएगा, होगा देखने लायक नहीं रहेगा। इंद्रपुर ने क्या देखा? वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया अपने कुछ आसपास के जो भक्तों को बता रहे थे कि अब वो ये वृंदावन नहीं रहा, अब वृंदावन पूरा बदल रहा है। यहाँ बड़े बड़े मकान आने लग गए हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, कोई वन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सब चारों तरफ बंगले बंगले हैं, कोठियां हैं, अब ये रहने लायक नहीं है, अब मैं और नहीं रहना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा, आप कैसे शरीर छोड़ना चाहते हैं? भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं आपस में, आसपास आपके ऐसा ऐसे वातावरण में आप शरीर छोड़ना चाहेंगे? इंद्रपुर, नहीं, मैं तो आप केवल महाप्रभु के सामने, गिरधारी के सामने, गिरिराज जी के सामने अपने ही कमरे में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ भक्तों के बीच में शरीर छोड़ो। ये इंद्रपुर ने पहले ही बोल दिया था। हाँ। और गौरताई शचिसुता निताई उनके बहुत प्रिय अर्चे विग्रह थे, इसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्होंने हाथ रखा, है ना। और नित्यानंद प्रभु की जो कौन अंतरंगा शक्ति कौन है, जानवा माता है, और जानवा माता ब्रज लीला में अनंग मंजरी है। इंद्र प्रभु अनंग मंजरी के बहुत प्रिय थे, उनका बहुत गुणगान करते थे। तो अनंग मंजरी श्रीमती राधारानी इनको वापस ले गई। तो इस प्रकार का जब दुख आता है, विपदा संता ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवत दर्शनम स्याद अपुनर्भवत दर्शनम। आपका दर्शन करने से क्या होगा? दोबारा दर्शन नहीं होगा संसार का। आप हमें कष्ट दीजिए कृष्ण, आप हमें बहुत कष्ट दीजिए, क्योंकि आप हमें जब कष्ट देते हैं तो आपका स्मरण होता है हमें। तो जितना अधिक हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना अधिक कष्ट भी मिलेगा, डरिए मत। इसलिए भगवान कह रहे मां शुचाह, मां शुचाह, डरो मत। क्योंकि जब ऐसा कष्ट आएगा तो ऐसे भक्तों को लगता नहीं है कि कष्ट है इस कारण से, लेकिन दुनिया को दिखाई पड़ेगा कि कष्ट है। और दुनिया को शिक्षा क्या मिलती है? भक्त समाज को, वैष्णव समाज को क्या दिखाई पड़ता है कि वैष्णव समाज को क्या अनुभूति होनी चाहिए कि ये इस कष्ट में भी देखो कृष्ण का नाम ले रहा है, इस कष्ट में भी इंद्रपुर नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरे, पांचांग मुद्रा में थे। ये कोई साधारण बात है कि कोई शरीर छोड़ने वाला और पांचांग मुद्रा में आप जाएंगे, नित्यानंद प्रभु के चरण छुएंगे? कर पाएगा कोई? साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। भीष्म पितामह 56 दिन के लिए बाणों की शैया में लेटे थे, लेकिन पांडवों को कौरवों को उपदेश दे रहे हैं। अगर उनको वास्तव में कष्ट होता तो क्या वो उपदेश दे सकते थे? उन्होंने तो कहा कि हे कृष्ण, आप सामने हैं, साक्षात आप खड़े हैं, आप कृपा करके आप उपदेश दें। नहीं, मैं नहीं उपदेश दूंगा, आप उपदेश आपको देना है, आप इनके पितामह हैं, आप उपदेश दीजिए। बाणों की शैया में लेटे हैं लेकिन भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं, बताइए हमें एक सुई लग जाए क्या होगा? थोड़ा चोट लग जाती है पाँव में, हाथ में, तो दिन रात उसी का चिंतन कर रहे थे, खटिया पकड़ लेते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। जितनी अधिक होगी शरणागति उतना अधिक होगा भजन। भजन कौन करेंगे? भगवान, भक्त का भजन करेंगे। भगवान भी भजन करते हैं, भगवान भी नाम लेते हैं, किसका? अपने भक्तों का, वो भी नाम भजन करते हैं, है ना। और विशेष रूप से तो महाप्रभु अपने भक्तों का नाम लेते रहते हैं, तो नाम भजन तो सबके लिए है। इंद्रपुर भी नाम भजन कर रहे थे, इसलिए ऐसे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता है। और ऐसे भक्तों को जब इस प्रकार का कष्ट आ जाता है, उनको संकेत मिल जाता है कि अब मौका है कि मैं पूर्ण रूप से राधारानी का शरण ले सकता हूं। जैसे प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में क्या हुआ, चोरी हो गई, प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे, चिट्ठी पढ़ के, हाँ हाँ ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है, चोरी हो गई, वाह, है ना। चोर उच्च के आए और फैक्ट्री में सब चोरी करके चले गए, फैक्ट्री बंद हो गई, आपकी लेटर आया प्रभुपाद जी को, अब मैं पूर्ण शरणागत हो सकता हूं राधा कृष्ण के चरणों में, हरि बोल। तो भक्त तो खुश होते हैं जब कष्ट आता है कि नहीं? भक्त खुश होते जब कष्ट आता तो भक्त खुश होते कि नहीं? हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ बाय दैट करंट। और भक्त जब इस प्रकार से जब भक्तों को कष्ट आता है तो ये संकेत है भक्तों के लिए कि अब है समय हरिनाम लेने का, अब है स्मरण करने का, कि हम राधारानी की शरण पूरी तरह से ले लें तो उस समय क्या होता है, राधारानी उनको वापस ले जाते हैं। तो भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता है क्योंकि भक्त जो है पूर्ण तरह से शरणागत होते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए ही ऐसी परीक्षा होती है, सबके लिए ऐसी परीक्षा नहीं होती है। जो भक्त उन्नत होते हैं उनके लिए ऐसी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं। लेकिन समाज को, वैश्य समाज को, हम जैसे साधक जो हैं, जो साधना की अवस्था में हैं, हम सबको शिक्षा मिलती है कि भक्त या भक्ति करना या भक्ति जो करना वो इतना चीप नहीं है, धाम जाना जो है इतना सस्ता नहीं है। धाम जाना है तो हमें पूर्ण रूपे अनासक्त होना पड़ेगा इस संसार से, तभी कीर्तनीय सदा हरि हो सकता है। हमेशा हम कीर्तन क्यों नहीं करते हैं, हमेशा हम क्यों नहीं नाम ले पाते हैं, कारण क्या है इसका? संसार से आसक्ति के कारण। बोलते हैं अभी तो 16 माला है, बाद में कर लेंगे कीर्तनीय सदा हरि, अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी थोड़ा हम भक्तों से बात करना चाहते हैं, हम थोड़ा घूमना चाहते हैं, हम कुछ और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी समय नहीं आया हरि नाम लेने का, हमेशा बाद में करेंगे। तो अमेरिकन स्लोगन क्या है, अमेरिकन स्लोगन है जस्ट डू इट, सोचो तो तुरंत कर दो उसको, बस किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इसलिए क्या करते हैं, जब देखते हैं भगवान देखते हैं कि ये भक्त जो है गंभीर नहीं हो रहा है तो ऐसे भक्त को कष्ट पहुंचाते हैं भगवान, ये गंभीर नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कष्ट देना। देह से बड़ी आसक्ति है ना उसको, अपने सुंदर शरीर से बड़ी आसक्ति है, अपनी विद्वत्ता में, अपने सौंदर्य से बड़ी आसक्ति है, अपनी योग्यताओं में बड़ी आसक्ति है। ठीक है, मैं उसको एक स्ट्रांग इंजेक्शन डोज देता हूं तब मेरा स्मरण करेगा ये, उसके बाद जो है फिर वो गंभीर होने पकता है अंदर से। और ऐसे जब ऐसे में जब वो भक्त पकने लगता है तब होता है अष्टम भजन। जैसे आपके देखिए हिजोलन भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज हमारे मंदिर में रुके, हमारा सौभाग्य कि उनकी सेवा का हमें अवसर मिल गया वहां पे, भक्त लोग बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं उनकी। और देखिए वो जिस दिन वो उनका हार्ट सर्जरी होने वाला था, हॉस्पिटल जाने वाले थे, उस दिन भी वो मंगल आरती में आए थे, वो रोज ही मंगल आरती में आ रहे थे, और उनकी आर्टरी सारी ब्लॉक थी, 100% ब्लॉकेज, दो आर्टरी से पूरा 100% ब्लॉकेज था, आप साथ में सेवा कर रहे थे है ना, तो मंगल आरती में वो आ रहे थे और बाहर बैठ के वो जब भी कर रहे थे आराम से है ना। और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को भी लेके गए थे वहां आईसीयू में, वो आईसीयू जगन्नाथ जी को नहीं छोड़ा उन्होंने, और शालिग्राम भी था शायद, शालिग्राम शिला भी था, गोपाल शिला उनके पास है। और बताया जाता है जिनके पास गोपाल शिला होता है वो फिर निश्चित है कि इस जन्म के बाद वो कहां जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, गोपाल शिला की महिमा है, गोपाल शिला की महिमा है। तो महाराज ने बताया मेरे पास गोपाल शिला है, और इसलिए मैंने शिला को क्या किया, अपने आसपास ही रखा 10 किलोमीटर के रेडियस में, अगर मेरे शरीर छोड़ना पड़ा मुझे, मान लीजिए कुछ हो गया मुझे, तो मुझे वापस जाने का अवसर मिल जाएगा कि शिला पास में ही है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी पास में ही है। और सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही, सर्जरी के बाद वापस आए और हफ्ते भर के अंदर वो ठीक होने लगे, और वहां जब ऑपरेशन जब हुआ, ऑपरेशन होके जब होश में आए तो कितने बजे उठे जानते हैं, वो सुबह 3:30 बजे उठ गए, 24 घंटे के अंदर। वेंटिलेटर लगाया हुआ था, पता नहीं अब कब उठेंगे, सब लोग डॉक्टर्स बड़े चिंतित थे, उन्होंने कहा 24 घंटे के लिए अभी भी खतरा है। लेकिन अगले दिन ही क्या हुआ, 3:30 बजे सुबह उठ गए, ऐसे उठे कि जैसे शायद मंगल आरती के लिए उठे हूं। तो ये शक्ति प्राप्त होती है कृष्ण से। और वापस आए हफ्ते भर के बाद, फिर व्हील चेयर में आए, मंदिर में दर्शन करना भी शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने प्रवचन देना भी शुरू कर दिया 15 दिन के अंदर। भागवतम का भागवतम क्लास 3-4 बार दे चुके हैं ऑपरेशन के बाद, और पहले की तरह गुर्राते हुए प्रवचन दे रहे हैं, और उनको देख के लगता भी नहीं है कि इनका इतना बड़ा हार्ट ऑपरेशन हुआ है। और ये अगर सामान्य व्यक्ति के साथ हो रहा होता तो महीनों महीने तो खटिया में रहता हो, है कि नहीं। तो ये निर्भीक होने की जो भावना है कहां से आती है, कृष्ण देते हैं, कृष्ण अपने भक्त को निर्भीक बना देते हैं, फियरलेस बना देते हैं, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठा देते हैं। तो इसलिए परीक्षा तो सबकी होगी, हम सबकी भी परीक्षा होती रहती है, जितना आगे बढ़ेंगे उतने अधिक होगी परीक्षा। इसलिए भागवत में देखिए जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हैं सबकी बड़ी बड़ी परीक्षा हुई, प्रहलाद महाराज के साथ बहुत कुछ हुआ लेकिन फिर भी उनका मन लगा रहा भगवान नहीं। तो परीक्षा क्या होता है, इस परीक्षा से हम देह से अनासक्त होते हैं, हमारा चित्त हमारा मन और लगता है भगवान में, और शरणागत होते हैं और समर्पित होते हैं भगवान की सेवा में। इसलिए गुरु भी क्या करते हैं, कई बार शिष्यों को ऐसे कठिनाई में रखते हैं, कष्टदायक परिस्थिति में रखते हैं, तपस्या जिसको कहते हैं। और ऐसी तपस्या से क्या होता है, हमारी चेतना हमारा मन पवित्र होता है। और ऐसे पवित्र मन से जब हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम लेने में भी आनंद आता है। तो कहने का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एक इजी गोइंग लाइफ नहीं है, आराम का जीवन नहीं है, है ना, आराम का जीवन नहीं। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना, छप्पन भोग महाप्रसाद उसके बाद आराम नहीं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, ये तपस्या का मार्ग है। और इसलिए वो बोलते हैं ना राधा कुंड में वो जो मिलते हैं मोहन बाबा, वो क्या बोलते हैं, कष्ट कर ले कृष्ण पाए। कई बार गर्मी में लोग नहीं चल पाते राधा कुंड में, बोलते कष्ट कर ले कृष्ण पाए, कष्ट करोगे तो कृष्ण मिलेंगे, ऐसे कष्ट नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए भक्तों के जीवन में हम देखते हैं किस तरह से कष्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही है। इसको सरलता से समझाने का तरीका और है कि मान लीजिए सड़क है, उबड़ खाबड़ सड़क है, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स हैं सड़क में, और एक व्यक्ति जा रहा है उसमें ऑटो रिक्शा में, थ्री व्हीलर में, है ना, वो भक्त नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जा रहा है बीएमडब्ल्यू में, वो भक्त है, उसी रास्ते से जा रहा है, और बीएमडब्ल्यू में जो बैठा है भक्त बैठा है उसको गाड़ी में बैठे बिल्कुल जर्क नहीं लग रहा है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो ऑटो रिक्शा में जा रहा है उसी रास्ते से जाता है तो इतना झटका खाता है, ऐसा लगता है सारी आते उसकी आते ही हिल गई है शरीर में। तो ये अंतर है कि भक्त भी उसी रास्ते से गुजरता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो किस में बैठा है, वो बीएमडब्ल्यू में बैठा है, यानी कि कृष्ण भावना भावित है पूर्ण रूप में, इसलिए उसको कष्ट का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम दिया पुरुष शरण। जब वो रामकेली में थे तो रामकेली में उनका नाम था, पहले यावड़ ने जो नाम दिया वो था सागर मलिक और दबीर खास, और पहले उनका घर का नाम था अमरदेव, वो संतोष देव, अमरदेव थे सनातन गोस्वामी जो बाद में बने, और संतोष देव बाद में रूप गोस्वामी बने। तो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखकर बोला, आज से तुम्हारा नाम ये नहीं है, आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन है। तो महाप्रभु के द्वारा डायरेक्ट नाम दिया गया था उनको। फॉर्म की चिंता ना करें, सब्सटेंस की चिंता करें। हमारे संप्रदाय में सब्सटेंस है और सब्सटेंस का महत्व होता है। फॉर्म के लिए हो सकता है कि एक लाइन वाली परंपरा हो, लेकिन उस सब अगर फॉर्म वाले परंपरा में उस लाइन में अगर बल्ब्स हैं लेकिन वो बल्ब्स अगर जल नहीं रहे तो क्या फायदा। लेकिन दूसरे लाइन है उसमें फॉर्म एक लाइन में नहीं है, अलग अलग जगह पे बल्ब्स लगे हैं लेकिन सारे बल्ब जल रहे हैं, और छोटे मोटे बल्ब नहीं है, बड़े बड़े शैंडलियर्स हैं, बहुत बड़ा पावर हाउस है। फले न परिच्छते, दीक्षा का लाइन है हमारे में भी, लेकिन दीक्षा से ज्यादा शिक्षा का महत्व है हमारे लाइन में, इस कारण से क्योंकि शिक्षा में सब्सटेंस है। और हमारी शिक्षा क्या है, नाम भजन, हरि नाम, हरे राम, हरे राम, हरे नाम है व केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, केवल हरि नाम। शिक्षा दीक्षा दोनों, शिक्षा भी दीक्षा भी, महाप्रभु के डायरेक्टली एम्पावर्ड डिसाइबल्स रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, नो टेंशन। ये छह गोस्वामी डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं चैतन्य महाप्रभु के। इसलिए षट गोस्वामियों के ग्रंथों में षट संदर्भ में देख लीजिए, आपको कहीं और प्रोसेस, कोई और प्रोसेस मिलेगा ही नहीं। जी गोस्वामी ने षट संदर्भ में और कोई प्रोसेस नहीं बताया, एक ही प्रोसेस बताया, हरिनाम। जी गोस्वामी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जी गोस्वामी को इसलिए तत्व आचार्य नियुक्त किया गया था रूप गोस्वामी के द्वारा, तत्व आचार्य, ही इज ए आचार्य ऑफ व्हाट, टू प्रेजेंट द फिलॉसफी ऑफ गॉड या वैष्णव फिलॉसफी। तो जी गोस्वामी ने कहीं नहीं मेंशन किया और कोई प्रोसेस, जी गोस्वामी ने एक ही प्रोसेस किया है, हरिनाम। उन्होंने कहा हरिनाम के द्वारा आप अपने आप ही स्मरण की अवस्था में पहुंचेंगे, और जब स्मरण करेंगे तब भी हरिनाम लेना आवश्यक है। भक्ति संदर्भ में बोल रहे हैं जी गोस्वामी, हरिनाम आपको स्मरण की दशा तक पहुंचा देगा, और उस स्मरण में भी हरिनाम लेना आवश्यक है। तो हरिनाम ही हमारा साधन है, हरिनाम ही हमारा साध्य है, ये सब्सटेंस है इसका। वही है भाई, रूप गोस्वामी को प्राप्त हुए थे बाद में 500 साल पहले गोमती टीला में वो मिले थे उनको, लेकिन पहले स्थापित किए थे महाराज वज्रनाभ के द्वारा 5000 साल पहले। हाँ द्वापर युग के, ये तीनों द्वापर युग के हैं, तीनों नहीं बहुत सारे हैं, केशव देव हैं, हरिदेव हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, बलदेव हैं, श्रीनाथ जी जो वहां पर हैं, साक्षी गोपाल हैं, ये सब महाराज वज्रनाभ के द्वारा स्थापित हैं, गोविंद मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ और वृंदा देवी, ये सब विग्रह स्थापना की थी महाराज वज्रनाभ ने। ठीक है, समय हो गया, बारिश हो रही है। हाँ क्या हो गया, स्ट्रगल, अच्छा ये कह रहे हैं कि कई बार हम लोग संघर्ष करते हैं, बहुत सारा कष्ट आता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे कृष्ण भावना भावित रूप में लें, कृष्ण कॉन्शियस वे में कैसे लें स्ट्रगल को। तो स्वयं अगर नहीं ले पाते हैं उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में, तो हमें इसलिए साधु संघ में जाना चाहिए। साधु संघ सर्व शास्त्र को है, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हुए। तो साधु संघ में आपको ये कृष्ण कॉन्शियस व्यू मिलेगा, क्योंकि आपको भक्त बताएंगे कि किसको कैसे कृष्ण कॉन्शियस वे में लें, इसलिए साधु संघ बहुत जरूरी है। भक्तों के संघ में रहकर हमें ये चेतना मिलेगी, हमें कॉन्शियसनेस मिलेगा कि हाँ इस कष्ट को इस भावना से देखो, कृष्ण कॉन्शियस वे में देखो, नहीं तो अपने में बहुत मुश्किल है। जो एडवांस होते हैं, बहुत उन्नत होते हैं, वो तो समझ जाते हैं खुद ही, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा रमण देव की, श्री श्री राधिका रमण की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।